శ్రీపరమానందమాధవం అజం శ్రీమద్ భాగవత్ కే చతుర్థ స్కంద అష్టాదశ అధ్యాయ శ్లోక నంబర్ 15 కా పాఠ కర్ రహే హం. ఇస్ అధ్యాయ కా నామ్ పృథ్వీ మహారాజ్ ద్వారా పృథ్వీ కా దోహన్. కృత్వావస్సం సురగణ ఇంద్రం సోమం అదుధ్వన్ హిరణ్మయేన పాత్రేణ వీర్యం ఓజో బలం పయః కృత్వా వత్సం సురగణ ఇంద్రం సోమం అదుధ్వన్ హిరణ్మయేన పాత్రేణ వీర్యమోజో బలం పయః కృత్వా వత్సం సురగణ ఇంద్రం సోమం అదుధ్వన్ హిరణ్మయేన పాత్రేణ వీర్యం ఓజో బలం పయః. కృత్వావశ్యం సురగణ ఇంద్రం సోమం అదుధ్వన్ హిరణ్మయేన పాత్రేణ వీర్యం ఓజో బలం పయః కృత్వావశ్యం సురగణ ఇంద్రం సోమం అదుధ్వన్ హిరణ్మయేన పాత్రేణ వీర్యం ఓజో బలం పయః కృత్వావశ్యం సురగణ ఇంద్రం సోమం అదుధ్వన్ హిరణ్మయేన పాత్రేణ వీర్యం ఓజో బలం పయః. మతజిస్ కృత్వావశ్యం సురగణ ఇంద్రం సోమం అదుధ్వన్ హిరణ్మయేన పాత్రేణ వీర్యం ఓజో బలం పయః కృత్వావశ్యం సురగణ ఇంద్రం సోమం అదుధ్వన్ హిరణ్మయేన పాత్రేణ వీర్యం ఓజో బలం పయః కృత్వావశ్యం సురగణ ఇంద్రం సోమం అదుధ్వన్ హిరణ్మయేన పాత్రేణ వీర్యం ఓజో బలం పయః. కృత్వా బనాకర్ వత్సం బచ్చడా సురగణ దేవతాను ఇంద్రం స్వర్గరాజా ఇంద్రకు సోమం అమృత్ అదుధ్వన్ దుహ్లియా హిరణ్మయేన సునక పాత్రేణ పాత్రసే వీర్యం మానసిక శక్తి ఓజః ఇంద్రియం కి శక్తి బలం శారీరక శక్తి పయః దూధ్. ఈ శ్లోక అనువాద తాత్పర్య శ్రీ ప్రభుపాద కి ద్వారా అనువాద. సమస్త దేవతాఓ నే స్వర్గ రాజా ఇంద్ర కో బచ్చడా బనాయా ఔర్ ఉన్హోనే పృథ్వీ మే సే సోమరస్ అర్థాత్ అమృత్ దుహ్ లియా. ఇస్ ప్రకార్ वो यह मानसिक शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति में अत्यंत बलशाली हो गए। तात्पर्य, इस श्लोक में सोम का अर्थ अमृत है। सोम एक प्रकार का पेय है जो स्वर्गलोक में चंद्रमा से लेकर विभिन्न उच्चलोकों में देवलोकों तक बनाया जाता है। सोम नामक इस पेय को पीकर देवता मन से, इंद्रिय से तथा शरीर से अधिक शक्तिशाली हो उठते हैं। हिरणमयेन पात्रेण से सूचित होता है कि यह सोमरस सामान्य मादक शराब नहीं है। देवता किसी प्रकार का मादक पेय नहीं छूते थे और न सोम कोई दवा है। यह एक भिन्न प्रकार का पेय है जो स्वर्गलोक में उपलब्ध है। असुरों द्वारा तैयार की जाने वाली शराब से सोम सर्वथा भिन्न है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं शग्रजातं सगणरघुनाथ नितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानितं स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंद राधा कंद नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशवानसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृत्वा वश्चं सुरगणः इंद्रं सोमं अदुद्वं हिरण्मयेन पात्रेण गिरियं ओजवलं पयः। तो श्रीमद् भागवत के श्लोक में किस प्रकार देवतागण इंद्र को वत्स बनाकर पृथ्वी से अपनी समृद्धि के साधन को प्राप्त हुए, इसका वर्णन हुआ है। जिस प्रकार ये कथा चल रही है कि महाराज पृथ्वी से खाद्य शस्य आदि दोहन कर रहे हैं और उसके साथ साथ इस पृथ्वी पर इस संसार में जो प्राणियां हैं वे भी अपने समृद्धि के लिए अपने जीवन धारण के लिए पृथ्वी से ही साधन को प्राप्त होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी देवी ये सप्त माताओं में एक है और माता शिशु का पालन पोषण करती है, तो उसी प्रकार ये पृथ्वी माता सारे संसार के जीवों का पालन पोषण करती है। यद्यपि आधुनिक काल के विज्ञानी और लोग जो एक तरह से नास्तिक हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, वे भी इस तत्व पर विश्वास नहीं करते हैं कि पृथ्वी माता सभी का पालन पोषण करती है। ये लोग सोचते हैं कि अपने अपनी बुद्धि के बल पर, अपने आविष्कारों के बल पर ये सारे संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, किंतु वस्तुतः जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये मूलभूत आवश्यकताएं हम पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं और ये पृथ्वी भगवान का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मैं पृथ्वी का गंध हूं और मैं ही सब कुछ संसार के जीवों के पालन पोषण के लिए सब कुछ प्रदान करता हूं। ये सारे संसार के जीवों के जीवन है भगवान, तो इस प्रकार भगवान के बिना या उनकी सृष्टि के बिना हमारा जीवन धारण करना असंभव है। तो भगवान ने हमारे जीवन धारण के लिए और समृद्धि के लिए ये सारी व्यवस्थाएं कर रखी है जो पृथ्वी से हम प्राप्त होते हैं। जब जब लोग अधार्मिक हो जाते हैं, भगवान से दूर चले जाते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते, तब संसार में अधर्म परिव्याप्त होता है और ऐसे विधर्मियों को अपने वक्ष पर धारण करने के लिए पृथ्वी माता भार सदृश मानती है। जो विधर्मी जन है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं और पापाचार में रहते हैं, ये पृथ्वी के लिए भार सदृश है। पृथ्वी माता को सर्वसहा कहा गया है क्योंकि वो सब कुछ सहन कर सकती है, प्राणियों के हर तरह का अत्याचार, प्राणी अपने जीवन धारण के लिए कृषि भूमि का कर्षण करते हैं, मनुष्य पृथ्वी से विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ निकालने के लिए पृथ्वी की खुदाई करते हैं, तो पृथ्वी माता ये सब सहन करती है। किंतु ऐसे विधर्मी या पापाचारियों का भार वो सहन नहीं कर सकती, इसलिए हम जानते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी माता भगवान ब्रह्मा के पास गई थी क्योंकि वो भार सहन करने में समर्थ नहीं हुई थी और ब्रह्मा ने देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान से अवतरित होने के लिए अनुरोध किया था। तो पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं प्राणियों के लिए, प्राणियों के जीवन धारण के लिए, वे वस्तुतः भगवान के लिए ये आवश्यक है, उनको अर्पित करना ये आवश्यक है। इसलिए कहा गया कि यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकयम कर्म बंधन, कि व्यक्ति जब यज्ञ पुरुष भगवान के लिए कर्म करेगा तब कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, किंतु भगवान यज्ञ पुरुष के लिए कर्म जब नहीं करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, तो कर्म बंधन में बंध जाता है। तो पृथ्वी से जीवन धारण के लिए जो भी खाद्य शस्य या दूसरी वस्तुएं हम प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान ने उसको प्रदान किया है पृथ्वी के माध्यम से, इसलिए भगवान ही सर्वप्रथम उपभोक्ता है इन वस्तुओं के। और जब कभी हम भगवान को अर्पित किए बिना उन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं तो भगवान कहते हैं कि वे लोग स्तेन एव सह चोर है, ये चोरी करके लेते हैं मेरा द्रव्य, मुझे अर्पित नहीं करते हैं और स्वयं भोग करते हैं। तो जब जब संसार में इस प्रकार पापाचारियों का आधिक्य होता है, उस समय पृथ्वी माता जो यज्ञ के लिए जो वस्तुएं अभिप्रेत हैं वो छिपा देती है, वो प्रदान नहीं करती। और ये जो प्रसंग चल रहा है उस समय ऐसी अवस्था हुई थी, पृथु महाराज से पहले उनके पिता वेण जो स्वयं को भगवान घोषित करते थे, भगवान पर विश्वास नहीं था और संसार में धर्माचरण धर्म आचरण यज्ञ अनुष्ठान आदि को बंद कर रखा था और उनके राज्य में चोर डाकुओं का आधिक्य था। तो इस अवस्था में पृथ्वी ने इस सारी वस्तुओं को अपने गर्भ में छिपा लिया था, इसलिए लोगों को खाना या खाद्य वस्तु उपलब्ध नहीं होती थी, लोग भूखे थे। तो जब पृथु महाराज राजगद्दी पर अभिषिक्त हुए तो ये लोग सब गए पृथु महाराज के पास, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है प्रजाओं का पालन पोषण करना। तो पृथु महाराज ने देखा कि इसका क्या कारण हो सकता है कि संसार में लोगों को खाद्य उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये पृथ्वी इसका कारण है, ये खाद्य शस्य प्रदान नहीं कर रही। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि कृषक बीज बोता है पृथ्वी पर और बारिश वर्षा ठीक समय पर होने पर भी खाद्य शस्य ठीक ढंग से उत्पन्न नहीं होती होते हैं। तो पृथ्वी जब प्रसन्न होगी तब वो खाद्य शस्य प्रदान करेगी, हम पृथ्वी को बाध्य नहीं कर सकते। जैसे आजकल बहुत सारे रासायनिक द्रव्य दिया जा रहा है अधिक से अधिक खाद्य शस्य उत्पादन करने के लिए, किंतु ये भी देखा गया है जहां कहीं भी ये रासायनिक द्रव्य दिया जाता है पृथ्वी पर अधिक खाद्य शस्य उत्पादन करने के लिए, तो वो भूमि बंजर बन जाती है कुछ काल के पश्चात और कुछ फसल नहीं होगी वहां। तो इस प्रकार पृथ्वी देवी को हम बाध्य नहीं कर सकते खाद्य शस्य देने के लिए। जब पृथ्वी प्रसन्न होती है तब वो खाद्य शस्य प्रदान कर सकती है। इसलिए संसार का यही नियम है, किसी से कोई लाभ लेना है उसको प्रसन्न करके लाभ लेना है। भगवान भी जीवों को बाध्य नहीं करते, यदि भगवान चाहें जीवों को बाध्य करके उनकी सेवा ले सकते हैं, किंतु भगवान भी बाध्य नहीं करते हैं जीवों को, वो उनके प्रेम चाहते हैं कि जीव जब प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करें तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। अन्यथा कोई बाध्य होकर किसी की सेवा कर रहे हैं उसका मन उसमें नहीं लगेगा, केवल बाध्य होकर करेगा किंतु उसमें प्रेम नहीं होगा, तो वह सेवा सेवा नहीं है। तो इसलिए भगवान भी बाध्य नहीं करते हैं संसार के जीवों को, जो उनकी सृष्टि है उनको थोड़ी स्वाधीनता देते हैं, तुम चाहे तो मेरी सेवा कर सकते हो, नहीं तो भोग करना चाहते हो अलग से तो करके देखो भोग सकते हो या नहीं। तो ये प्रेम से हम किसको प्रसन्न करके उससे हम इप्सित द्रव्य प्राप्त कर सकते हैं। तो पृथ्वी को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। जब पृथ्वी महाराज पृथ्वी को दंडित करना चाह रहे थे, पृथ्वी भयभीत हो गई और एक गाय का रूप लेकर आत्मरक्षा के लिए दौड़ने लगी और पृथ्वी महाराज उसके पीछे दौड़ रहे थे, किंतु पृथ्वी महाराज से बचना पृथ्वी के लिए संभव नहीं था। तो अंत में पृथ्वी ने पृथ्वी महाराज को मनाने का प्रयास किया कि किस प्रकार वो वध योग्य नहीं है और वो खाद्य शस्य प्रदान इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि लोग पापाचारी हो गए, और यदि पृथ्वी महाराज अपनी प्रजाओं का पालन करना चाह रहे हैं, उनको धर्म के पथ पर लाना चाह रहे हैं, तो पृथ्वी खाद्य शस्य देने के लिए प्रस्तुत है। यदि वो यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे और उसके प्रसाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो पृथ्वी देने के लिए प्रस्तुत है। किंतु किस प्रकार पृथ्वी से हर प्राणी अपना इप्सित वस्तु प्राप्त कर सकता है, पृथ्वी को कामधुक कहा गया है, अर्थात जिसकी जैसी कामना है उस प्रकार पृथ्वी उसको दे सकती है। जैसे सुरभि गाय होती है कामधेनु, वो केवल दूध नहीं देती है, जो भी हम कामना करेंगे वो देने में समर्थ है। दूध के अतिरिक्त जितना दूध चाहे वो दे सकती है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी चाहे द्रव्य वो देने में समर्थ है। तो उसी प्रकार ये पृथ्वी सब कुछ देने में समर्थ है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी महाराज ने दोहन किया पृथ्वी का। तो सर्वप्रथम पृथ्वी ने यह बताया कैसे उसका दोहन किया जा सकता है उनको प्रसन्न करने के लिए। तो पृथ्वी ने गाय का रूप लिया था, तो गाय को प्रसन्न करने के लिए या गाय से हम दूध लेने के लिए यह आवश्यक है कि हम बच्चा या बछड़े को गाय के पास रखे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब बछड़ा गाय के पास रहेगा तो जिस प्रकार माता अपने शिशु के प्रति वत्सल होती है, शिशु के प्रति प्रेम प्रदर्शन करती है, तो उसी प्रकार शिशु को देखकर माता के स्तन से दूध निकल आता है प्रेम बस। और जब शिशु नहीं है माता स्तन पान नहीं करा सकती, दूध नहीं निकलता। तो उसी प्रकार पृथ्वी माता ने कहा जिसने गाय का रूप लिया था कि तुम मेरे पास बच्छा को लाओ, बछड़े को लाओ, किसी को बछड़ा बना करके लाओ, जिससे मैं प्रेम से द्रवित होकर मैं दूध दे सकती। तो बछड़े के बिना हम दूध गाय से नहीं ले सकते। आजकल अवश्य कृत्रिम उपाय बना रहे हैं लोग दूध निकालने के लिए किंतु वह दूध पुष्टिकर दूध नहीं होता। तो प्रेम से जो दूध निकलता है वो पुष्टिकर दूध होता है, शरीर को पुष्ट बनाता है। तो ये बछड़ा बनाने के लिए पृथ्वी माता ने कहा पृथ्वी महाराज से कि आप किसको बछड़ा बनाए, बछड़ा मेरे पास लाइए, मैं दूध देने के लिए प्रस्तुत हूं, क्योंकि खाद्य शस्य खाद्य वस्तुएं मेरे भीतर है और जितना शीघ्र हो सके आप उसको निकालें मुझसे। तो पृथ्वी महाराज ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, सब खाद्य शस्य और जितनी भी वनस्पतियां निकालने के लिए पृथ्वी से उनके माध्यम से, क्योंकि जीवन धारण के लिए यह आवश्यक है कि जितने बीज हैं, शस्य हैं, वनस्पतियां हैं, ये जीवन धारण के लिए आवश्यक है मनुष्य के लिए। तो इसलिए पृथ्वी महाराज ने बछड़ा बनाया और बछड़ा को देखकर गाय का हृदय द्रवीभूत होता है तो वो दूध देती है, अपने आप स्रवित होता है दूध उसके स्तन से। तो ये जो श्लोक है इसमें ये इस श्लोक में ये कहा गया है देवताओं के बारे में, कृत्वा वत्सं सुरगणा इंद्रं सोमं अदुदुः। तो दूसरे लोगों ने इसका लाभ उठाया, जब पृथ्वी महाराज दोहन कर रहे थे पृथ्वी का तो ऋषियों ने इसका लाभ उठाया, देवताओं ने लाभ उठाया और दूसरे मनुष्यतर प्राणियों ने भी इसका लाभ उठाया, सभी ने जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है सभी ने पृथ्वी रूपी गाय से उसको दोहन किया, उसको प्राप्त किया। तो यहां पर देवताओं ने क्या प्राप्त किया इसका वर्णन है, तो कहते हैं कि कृत्वा वत्सं सुरगणा। तो मनुष्यों में ये देवताओं को श्रेष्ठ माना गया है और जिस मनुष्य में देवता के गुण होते हैं उसको देवता माना गया है। तो ये देवता लोग स्वर्ग में निवास करते हैं और साधारण रूप से इस संसार के लोग स्वर्ग जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, इसलिए उत्सुक हैं क्योंकि वहां अधिक इंद्रिय भोग उपलब्ध है, क्योंकि संसार के लोग अधिकतर इंद्रिय भोग चाहते हैं और ये इंद्रिय भोग स्वर्ग लोक में अधिकतर उपलब्ध है, इसलिए स्वर्ग की कामना करना स्वाभाविक है साधारण लोगों में। और लोग वस्तुतः यही जानते हैं कि स्वर्ग गति को प्राप्त होना यही श्रेष्ठ गति है, इसके अतिरिक्त लोग और कुछ नहीं जानते कि स्वर्ग के अतिरिक्त या उससे उच्चतम लोक है इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं साधारण लोगों को। इसलिए कभी भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि वो स्वर्ग गति को प्राप्त हो गया, स्वर्गवास हो गया उसका, हमें यह पता नहीं है कि उसका स्वर्गवास हुआ या नरकवास किंतु हम कहते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया। इसका अर्थ है कि हम यही चाहते हैं या कामना करते हैं कि वो उच्च गति को प्राप्त हुआ जहां पर वो सुख में रहेगा, स्वर्ग में सुख में रहेगा। तो स्वर्ग में सुख क्या है यहां पर बताया गया, जिस सुख को देवताओं ने प्राप्त किया पृथ्वी का दोहन करके। तो कहते हैं कि देवताओं ने जब पृथ्वी रूपी गाय का दोहन किया तो उन्होंने बछड़ा किसको बनाया, इंद्र को बनाया जो देवताओं में श्रेष्ठ है। और भगवान कहते हैं कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितने प्राणी हैं, सभी में जो श्रेष्ठ है वो मैं हूं। भगवत गीता में भगवान वर्णन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जैसे देवताओं में मैं इंद्र हूं, बात कहते हैं कि मैं ऋषियों में भृगु ऋषि हूं, सिद्धों में कपिल मुनि हूं, पुरोहित में बृहस्पति हूं। तो भगवान इसका वर्णन करते हैं भगवत गीता में। तो जो भी श्रेष्ठ वस्तु हम इस संसार में देखते हैं वो भगवान का स्वरूप है। इसलिए इन श्रेष्ठ वस्तुओं के माध्यम से ये पृथ्वी का दोहन हो रहा है। जैसे स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया महाराज पृथु ने, स्वयंभू मनु जो मानव के स्रोत कहे जाते हैं, उन्हीं से मानव समाज की सृष्टि हुई। या ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, अब देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया। तो जो भी श्रेष्ठ है उनमें, देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र है, उनको बछड़ा बनाया गया। या ऋषियों में या पुरोहितों में श्रेष्ठ बृहस्पति है, उनको बछड़ा बनाया गया। मनुष्य में श्रेष्ठ स्वयंभू मनु है, उनको बछड़ा बनाया गया। और आगे भी ऐसा वर्णन आता, दैत्यों में प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ है, उनको बछड़ा बनाया गया। तो इसका कारण क्या है कि इन श्रेष्ठ प्राणियों को बछड़ा बनाया गया पृथ्वी का दोहन करने के लिए? क्योंकि ये श्रेष्ठ प्राणी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान के भक्त हैं। और जो भगवान का भक्त होता है वो सभी का प्रिय होता है। तो पृथ्वी माता जब वो श्रेष्ठ व्यक्ति का दर्शन करेगी बछड़े के रूप में, जो भक्त है, भगवान का भक्त है, तो उसको देखकर उनका हृदय द्रवीभूत होना स्वाभाविक है, प्रेम उमड़ना स्वाभाविक है। इसलिए वो उनके जो इप्सित वस्तु, उनकी जो इप्सित वस्तु या काम्य वस्तु वो प्रदान करने में समर्थ होगी। तो देवताओं ने इंद्र को बनाया बछड़ा, जो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं देवताओं में, और जो भगवान के ज्येष्ठ भ्राता भी समझे जाते हैं, क्योंकि भगवान उपेंद्र के रूप में आविर्भूत हुए, इंद्र के कनिष्ठ भ्राता के रूप में। तो भगवान उपेंद्र इंद्र को अपने ज्येष्ठ भ्राता मानते हैं। तो इस प्रकार इंद्र को तो देवताओं ने बछड़ा बनाया, और पृथ्वी से देवताओं ने क्या प्राप्त किया, कहते हैं सोमं अदुदुहन। देवताओं ने दोहन किया पृथ्वी का इंद्र के माध्यम से बछड़ा बनाकर, और क्या प्राप्त किया दूध के रूप में, सोमरस। ये सोमरस के संबंध में बहुत सारे लोगों की भ्रांत धारणा है। कभी कभी लोग कहते हैं कि देवता लोग भी सोमरस पान करते थे, तो ये सोचते हैं कि देवता लोग शराब पीते थे। तो यही उदाहरण देते हैं कि देवता लोग सोमरस पान करते हैं, शराब पीते हैं, हम पी रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ। किंतु श्लोक प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं तात्पर्य में कि सोमरस शराब नहीं है, ये सोमरस ना तो कोई औषधि है ना कोई शराब है, ये एक स्वास्थ्यकर पुष्टिकर पेय है, पानीय द्रव्य है, जिससे शरीर की, मन की और इंद्रियों की पुष्टि होती है। यह एक प्राकृतिक रस है, सोमरस, जिसका अन्य नाम है अमृत। यहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि सोम अर्थात अमृत, तो ये इसको पान करने से देवतालों को क्या प्राप्त हुआ? वीर्यं ओज बलं। तो देवताओं ने जब दोहन किया पृथ्वी का, इंद्र को बछड़ा बनाकर, और सोमरस निकला, अमृत निकला दूध के रूप में, तो उसको रखा किसमें? हिरणमय न पात्र में। हिरणमय अर्थात सोना, सोने के पात्र में उसको रखा। तो ये भी एक द्वेतक है कि कोई भी श्रेष्ठ वस्तु को सोने के पात्र में रखा जाता है, श्रेष्ठ वस्तु को श्रेष्ठ पात्र में रखा जाता है, जो श्रेष्ठ वस्तु नहीं है उसको श्रेष्ठ पात्र में नहीं रखा जाता। जैसे आगे आएगा, आगे के श्लोक में, जब दैत्यों ने दोहन किया पृथ्वी का और उनको आवश्यक क्या था? शराब पीना। दैत्य लोग शराब पीना चाहते हैं क्योंकि वो तमोगुण में होते हैं, तो दूध के रूप में उनको शराब प्राप्त हुआ और उसको उन्होंने रखा किसमें? लोहे के पात्र में, क्योंकि शराब श्रेष्ठ वस्तु नहीं है इसलिए उसको लोहे के पात्र में रखा। किंतु ये अमृत, ये श्रेष्ठ वस्तु है इसलिए देवताओं ने इसको श्रेष्ठ पात्र में रखा, हिरणमय न पात्र, सोने के पात्र में रखा, और इसको पीकर देवताओं को क्या प्राप्त हुआ? ना वीर्यम, ये मानसिक शक्ति, क्योंकि किसी भी मनुष्य को समृद्ध बनने के लिए उसको मानसिक शक्ति चाहिए। अगर मनोबल नहीं है व्यक्ति कुछ आगे नहीं बढ़ सकता, ये मनोबल बहुत आवश्यक है। मनोबल से व्यक्ति दुस्साहसिक कार्य कर सकता है, असंभव कार्य को संभव कर सकता है भगवान की कृपा से, किंतु मनोबल आवश्यक है। किंतु पहले से ही व्यक्ति मनोबल को त्याग देता है, मनोबल नहीं है, तो कोई भी कार्य में वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए यह आवश्यक है, मनोबल की आवश्यकता। और देवताओं में अधिक मनोबल है क्योंकि वो अमृत को प्राप्त हुए देवता लोग, इस अमृत से, सोमरस से वो मनोबल को प्राप्त हुए, मानसिक शक्ति को प्राप्त हुए, और उसके साथ साथ ओज इंद्रियों की शक्ति, क्योंकि व्यक्ति को अगर श्रेष्ठ बनना है तो ये आवश्यक है। देवता लोग श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें मानसिक बल, मनोबल है और इंद्रियों की शक्ति भी है। जब इंद्रियों की शक्ति नहीं रहेगी व्यक्ति भौतिक भोग नहीं कर सकता, भौतिक भोग के लिए भी इंद्रियों की शक्ति चाहिए। जब यदि व्यक्ति शक्तिहीन है तो भौतिक भोग भी नहीं कर सकता। तो इस संसार में इंद्रिय भोग के लिए इंद्रियों की शक्ति चाहिए, मनोबल चाहिए और शारीरिक शक्ति भी चाहिए, और ये सब देवताओं को प्राप्त हुआ अमृत पान करने से। तभी जाकर वे लोग स्वर्ग में स्वर्ग सुख का भोग करते हैं देवता लोग। यद्यपि यह जीवन का उद्देश्य नहीं है कि हम इन इंद्रियों की शक्ति, शारीरिक बल या मानसिक शक्ति को प्राप्त होकर इंद्रियों का भोग करें, यह हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये इंद्रिय भोग भी क्षणिक है। यही संस्पर्शदा भोगा दुख यो नएवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति इस इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होता है, यद्यपि व्यक्ति में मानसिक बल, मनोबल हो, शारीरिक शक्ति हो, इंद्रियों में शक्ति हो, फिर भी वो इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि यह इंद्रिय भोग आद्यंतवंत, इसका आदि है और अंत है, ये क्षणिक है। ये सुख, इंद्रियों का सुख क्षणिक है, ये नित्य सुख नहीं है। इसलिए अनित्य सुख के पीछे बुद्धिमान व्यक्ति धावमान नहीं होता, वो नित्य सुख के लिए प्रयास करता है, मनोबल को, शारीरिक शक्ति को, इंद्रियों की शक्ति को वह भगवान की सेवा में लगाता है, जिससे वह नित्य आनंद को प्राप्त हो सकता है। जब व्यक्ति भक्त भगवान को आनंद प्रदान करेगा, वह स्वयं सुखी होगा, यह स्वाभाविक है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसका उपयोग कृष्ण की सेवा में करता है, किंतु जो बुद्धिहीन है, ये लोग मनोबल, शारीरिक शक्ति और इंद्रियों की शक्ति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। तो देवताओं को वो सुख प्राप्त है स्वर्ग लोक में, और यही कारण है कि इस मर्त्यलोक में जो लोग इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, वो स्वर्ग की कामना करते हैं, क्योंकि यहां अमृत प्राप्त नहीं है। इस मृत्यु लोक में अमृत प्राप्त नहीं है, ये मृत यहां मृत्यु लोक है। तो स्वर्ग लोक में अमृत प्राप्त है, और इसलिए स्वर्ग के देवता लोग अधिक सुख भोग करते हैं, इंद्रिय सुख, जिसके कारण स्वर्ग लोक में भक्ति करना बहुत कष्ट साध्य है। इतने इंद्रिय सुख के बीच, इतने ऐश्वर्यों के बीच भक्ति करना संभव पर नहीं, और यही कारण है कि इंद्र भगवान, देवता लोग भगवान के भक्त होने पर भी ये सब शुद्ध भक्त नहीं है। तो इंद्र यह जानकर भी भोग के कारण वो मोहित हो जाते हैं, बार बार मोहित हो जाते हैं, कभी गुरु का अपमान करते हैं, कभी भगवान का अपमान करते हैं, मोहवश। तो जब व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्यों के बीच रहता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कामैस्तस्ते हृतक ज्ञान, ये काम वासना के कारण उनका ज्ञान अपहृत, माया के द्वारा अपहृत हो जाता है, जिसके कारण वो न तो अपने गुरु को सम्मान प्रदर्शित कर सकते हैं, न भगवान को सम्मान प्रदर्शित कर सकते हैं, और इस प्रकार अपराध करते हैं और अपनी सारी समृद्धि को खो बैठते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता। तो इसलिए कभी कभी देवता लोग भी भक्ति करने के लिए इस मर्त्यलोक में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि इस मर्त्यलोक में सुख दुख दोनों है। जब व्यक्ति दुख में होता है तब वो भगवान को पुकारता है, भगवान की ओर उन्मुख होता है। सुख में व्यक्ति भूल जाता है भगवान को, मोहित हो जाता है। और यही कारण था कि स्वयं कुंती देवी इसलिए प्रार्थना कर रही थी भगवान से। कुंती देवी दुख मांग रही थी भगवान से, विपद आसन तथा यत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत्स्याद अपुनर्भव दर्शन, कि उन्हीं सारी विपत्तियों का बार बार दीजिए हमें, क्योंकि विपत्तियां आने पर हम आपको व्याकुल होकर स्मरण करेंगे, पुकारेंगे। और आप भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त का दुख देख नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप दौड़ करके आएंगे हमारी रक्षा करने के लिए। हम आपका दर्शन करने में समर्थ होंगे, और आपके दर्शन करने का अर्थ है हमारा भव दर्शन नहीं होगा, संसार का दर्शन नहीं होगा। उसी प्रकार सुदामा, जबकि पहले से वो दरिद्र अवस्था में थे, तो कभी कभी लोग कहते हैं कि सुदामा इसलिए दरिद्र हुए क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। तो कभी कभी इसलिए लोग डरते हैं कृष्ण की भक्ति करने के लिए, सुदामा का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करने से सुदामा बहुत गरीब हुए, हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो गरीब हो जाएंगे। किंतु सुदामा दरिद्र होने का कारण क्या था? क्या कृष्ण की भक्ति करने के लिए वो दरिद्र हुए? नहीं, सुदामा धन संपत्ति नहीं चाहते थे, वो दरिद्र होकर रहना चाहते थे जिससे कि वो कृष्ण का स्मरण कर सके। धन संपत्ति ऐश्वर्य होने पर कृष्ण को भूल जाने की संभावना थी, इसलिए सुदामा नहीं चाहते थे। और यही कारण था कि कृष्ण ने उनको कुछ दिया नहीं था, क्योंकि सुदामा नहीं चाहते थे। किंतु पत्नी के कहने पर जब सुदामा गए द्वारका, कृष्ण से उन्होंने कुछ मांगा नहीं, किंतु भगवान कृष्ण जानते थे किस लिए सुदामा आए हैं, और प्रकाश रूप में उन्होंने सुदामा को कुछ नहीं दिया। किंतु जब सुदामा आते हैं घर पर, अपने घर को पहचान नहीं पाते, अपनी कुटिया के स्थान पर प्रसाद वहां खड़ा है, राजप्रसाद भगवान की कृपा से। तो भगवान कृष्ण किसको देना चाहें, हमारे पास रखने के लिए स्थान नहीं होगा, और किससे लेना चाहें हम रख नहीं सकते। तो सुदामा नहीं चाहते थे, भगवान ने नहीं दिया था, और उनकी पत्नी की कामना हुई धन संपत्ति की, भगवान ने दे दिया, जबकि सुदामा को कोई कामना नहीं थी। तो भगवान सुदामा की पत्नी की कामना को पूर्ण करने के लिए धन संपत्ति दिए, किंतु सुदामा ने क्या किया, धन संपत्ति को प्राप्त होकर फिर भी वो मोहित नहीं हुए। सुदामा यद्यपि ऐश्वर्य के बीच रह रहे थे, उनकी पत्नी तो बहुत खुश थी, उनको चाहिए था धन संपत्ति ऐश्वर्य, किंतु सुदामा इतने ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी वो खाट पर नहीं सोते थे, वो नीचे ही सोते थे जमीन पर। और ऐसे ही सरल जीवन यापन करते थे सुदामा, इसी भय से कि कहीं ऐश्वर्य का उपभोग करने से वो कृष्ण को भूल ना जाए। तो ये भौतिक संसार जो है, विशेष रूप से ये पृथ्वी लोक, यहां सुख और दुख मिश्रित रूप से व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो यहां भक्ति करने के लिए उपयुक्त स्थान है ये पृथ्वी लोक, जो देवलोक में नहीं हो सकता इस वजह के कारण, इसलिए देवता लोग कामना करते हैं इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो यहां पर जो बताया गया है कि देवता लोग जो ऐश्वर्य को प्राप्त हुए हैं, जो समृद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसका कारण इन लोगों ने इस पृथ्वी से ही प्राप्त किया है। पृथ्वी का दोहन करके जो अमृत को प्राप्त हुए हैं, इसके कारण वो समृद्ध हैं, समृद्धिशाली हैं। और आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे प्राणी अपने अपने अभीष्ट को प्राप्त हुए पृथ्वी से, पृथ्वी का दोहन करके अपने श्रेष्ठ जीवों को वत्सा के रूप में व्यवहार करके ये लोग अपने अभीष्ट को प्राप्त हुए, इस प्रकार समृद्ध हुए। तो इसके कहने का अर्थ है कि जब जब हम भक्ति मार्ग से दूर चले जाएंगे, तब हम असुविधा का सम्मुखीन होंगे। पृथ्वी हमारी, हमारे समृद्धिशाली जीवन यापन के लिए इप्सित वस्तु अर्पण नहीं करेगी, किंतु जब हम भगवान की भक्ति करने लगेंगे, धर्म मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे, तो ठीक समय पर वर्षा होगी। पृथ्वी सब कुछ हमें प्रदान कर सकेगी, जिसको हम भगवान की सेवा में लगाकर हम प्रसन्न हो सकते हैं और संसार के सारे जीव प्रसन्न हो सकते हैं। यही वस्तुतः समृद्धिशाली जीवन का मार्ग है। ये नहीं है कि फैक्ट्री चलाना और तरह तरह के वैज्ञानिक आविष्कारों से हम समृद्धिशाली नहीं बन सकते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब खाद्य शस्य उपलब्ध नहीं होंगे तो हम नट बोल्ट नहीं खाएंगे, नट बोल्ट खाकर जीवन धारण नहीं कर सकते। तो ये हमारी वास्तविक समृद्धि नहीं है। प्राचीन काल में उसी व्यक्ति को समृद्ध समझा जाता था जिसके पास अधिक कृषि भूमि होती थी, जिसके पास अधिक गाय होती थी, गौएं होती थी, वो उसी व्यक्ति को धनी माना जाता था। नंद महाराज इतने समृद्धशाली थे क्योंकि उनके पास बहुत सारी गौएं थी, कृषि भूमि थी, और इसी से लोग आनंद में रहते थे, कोई समस्या नहीं थी। आज बहुत सारी समस्याएं हैं, किस लिए? क्योंकि हम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पाने के मार्ग से हम अलग हो गए, भगवान की भक्ति मार्ग से हम अलग हो गए, इसलिए संसार में हम असुविधाओं का सम्मुखीन होते हैं। समय पर वर्षा नहीं होती है, खाद्य शस्य उत्पन्न नहीं होता है, और जो भी उत्पन्न होता है सब विष है। हम आजकल जो भी खा रहे हैं सब विष खा रहे हैं, सब रासायनिक द्रव्य उसमें मिला हुआ है। यहां तक कि आप कहेंगे हम फल खा रहे हैं, फल में भी दिया जा रहा है रासायनिक द्रव्य, अब क्या खा कर रहेंगे कलयुग में? तो इसमें हम कहां शारीरिक शक्ति को प्राप्त होंगे, कहां इंद्रियों की शक्ति को प्राप्त होंगे, कहां मानसिक बल को प्राप्त होंगे? ये संभव पर नहीं है। तो इसलिए मनुष्य समाज को इस बात को समझना चाहिए कि हम किस मार्ग में जा रहे हैं, जो गलत मार्ग में जा रहे हैं, इससे हमारा ध्वंस अवश्यंभावी। इसलिए हमारे मार्ग को बदलना है, और इस मार्ग को बदलने का कार्य भक्तों के ऊपर है। ये गुरु दायित्व श्रील प्रभुपाद ने हम लोगों को दिया है, ये प्रचार करने के लिए लोगों में, लोग किस प्रकार समृद्धि का मार्ग को प्राप्त होंगे, भक्ति मार्ग में किस प्रकार समृद्धिशाली हो सकते हैं, इस बात को लोगों को बताना है। ये सारे इस्कन के भक्तों का कार्य है, श्रील प्रभुपाद के यही इच्छा है कि हम प्रचार करें और लोगों को धर्म के मार्ग पर लाएं, कृष्ण भक्ति के मार्ग पर लाएं, तब संसार में सुख समृद्धि की कामना हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण।